न्याय दर्शन के ईश्वर विचार का दूसरा टॉपिक ईश्वर के लिए प्रमाण का दूसरा टॉपिक ख अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है, इसका आधा का मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। साथ साथ इसका मतलब यह भी होता है कि ईश्वर इस बात का विचार करता है कि हमारे कर्म लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हैं या नहीं। हम ईश्वर और अन्य मनुष्यों के प्रति अपने कर्तव्य करते हैं या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखकर ईश्वर हमारे कर्मों को अच्छा या बुरा समझता है। अतएव यह भी कोई असंगत विचार नहीं कि ईश्वर हमें कर्मों के लिए पुरस्कृत करता है और बुरे कर्मों के लिए दंड देता है। अतः संसार यदि ईश्वर का बनाया हुआ है तो वहां अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा अवश्य ही होगा। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है। हम देखते हैं कि प्रायः कर्म और फल के बीच समय का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है, तो फिर दोनों में कार्य कारण संबंध कैसे स्थापित किया जाता है? हमारे कितने ही ऐसे दुख हैं जिनका कारण वर्तमान जीवन में पाया ही नहीं जाता। जो दुख हमारे वर्तमान जीवन में कर्मों के कारण ही होते हैं, वे भी उन कर्मों से तत्क्षण ही उत्पन्न नहीं हो जाते, बल्कि कुछ समय के बाद उत्पन्न होते हैं। युवावस्था का पापी बुढ़ापे में दुख भोगता है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे आत्माओं में अच्छे कर्म पुण्य की और बुरे कर्म पाप की सृष्टि करते हैं, और यह पुण्य या पाप कर्मों के नष्ट हो जाने पर आत्मा में रह जाता है। अच्छे या बुरे कर्मों से उत्पन्न पुण्यों या पापों का भंडार अदृष्ट कहलाता है। अदृष्ट की कल्पना कोई गूढ़ या रहस्यात्मक कल्पना नहीं है। यह तो विदित ही है कि अच्छे कर्मों का मन पर पवित्र प्रभाव पड़ता है और बुरे कर्मों का दूषित प्रभाव पड़ता है। यह भी विदित है कि धर्म के आचरण से निर्भयता, प्रसन्नता, शांति आदि सुखों की वृद्धि होती है, और अधर्म के आचरण से शंका, चंचलता, अशांति आदि दुखों की वृद्धि होती है। इसी तरह अदृष्ट से जो पूर्व कर्मों से उत्पन्न पाप और पुण्य का भंडार है, हमारे वर्तमान सुख दुखों को उत्पन्न करता है। लेकिन एक प्रश्न फिर उठ सकता है कि अदृष्ट कर्मों एवं उनके फलों में व्यवस्था कैसे ला सकता है? अदृष्ट तो अचेतन है, वह स्वयं नहीं समझ सकता कि किसी कर्म का फल किस प्रकार का या किस मात्रा का सुख या दुख होगा। अतः अदृष्ट परिचालन के लिए एक बुद्धिमान संचालक की परम आवश्यकता है। अदृष्ट का संचालन जीवात्मा नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीवात्मा अपने अदृष्ट के संबंध में स्वयं कुछ नहीं जानता, और अदृष्ट का फल आत्मा की इच्छाओं के विरुद्ध भी हो सकता है। अतः अदृष्ट का संचालक नित्य, सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ परमात्मा ही हो सकता है। कांट कहते हैं कि ईश्वर ही पुण्य के साथ सुख और पाप के साथ दुख का संयोग करते हैं। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा अपनी प्रजाओं को उनके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार पुरस्कार या दंड देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हमारे कर्मानुसार सुख या दुख प्रदान करता है। ईश्वर विचार का दूसरा टॉपिक ईश्वर के लिए प्रमाण का ये तीसरा टॉपिक है। ग धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता का कारण ईश्वर है। ईश्वर के अस्तित्व का एक तीसरा प्रमाण वेदों की प्रामाणिकता है। सभी धर्म अपने अपने धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि वेदों की प्रामाणिकता का क्या कारण है? न्यायिकों के अनुसार वेदों के प्रामाण्य का कारण ईश्वर है। जिस प्रकार विज्ञानों का प्रामाण्य उनके प्रवर्तकों पर निर्भर है, उसी प्रकार वेदों के प्रामाण्य का कारण वह है जिसने उन्हें प्रामाणिकता प्रदान की। वेदों की प्रामाणिकता की जांच हम अन्य विज्ञानों की तरह ही कर सकते हैं, किंतु ऐसी जांच हम केवल वेदों के लौकिक विधानों के बारे में ही कर सकते हैं। उनके अलौकिक विधानों की जांच इस प्रकार नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम संपूर्ण वेद को ठीक उसी तरह प्रमाणिक मान सकते हैं जिस तरह किसी विज्ञान के कुछ अंशों को ही जांच कर हम उसे पूर्णतः प्रमाणिक मानते हैं। जिस तरह किसी विज्ञान के कुछ अंशों को ही जांच कर हम उसे पूर्णतः प्रमाणिक मानते हैं, तो हम देखते हैं कि वेदों की प्रमाणिकता उनके रचयिता पर निर्भर है। वेदों का रचयिता जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव उनके अलौकिक एवं अतीन्द्रिय विषयों को नहीं जान सकता है। अतः वेदों का कर्ता एक ऐसा पुरुष है जो भूत, वर्तमान और भविष्य, मध्य परिणामी, विभु और अणु इंद्रिय गम्य और अतीन्द्रिय सभी विषयों का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य धर्म ग्रंथों की तरह वेदों की अभिव्यक्ति भी ईश्वर के द्वारा ही हुई है। ईश्वर के लिए प्रमाण का चौथा पॉइंट है, आप्त वचन भी ईश्वर को प्रमाणित करता है। ईश्वर के अस्तित्व का चौथा प्रमाण यह है कि श्रुति इसके अस्तित्व को मानती है। कुछ आप्त वचनों को हम यहाँ उद्धृत कर सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा ही सबों का स्वामी है, सबों का शासक है, सबों का रक्षक है, सभी प्रकार के नैवेद्यों का अधिकारी परमात्मा है, पुरस्कारों का दत्ता भी वह है। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि सभी विषयों में एक ही ईश्वर निहित है, वह सर्वव्यापी है, सभी विषयों का अंतस्तम आत्मा है और सबों का व्यवस्थापक एवं संरक्षक है। कौशितक्य उपनिषद में कहा गया कि वह सभी आत्माओं का शासक है और संसार का कर्ता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि मैं ही विश्व का माता पिता हूँ, मैं ही इसका प्रतिपोषक हूँ और मैं ही इसका अपरिवर्तनशील स्वामी हूँ। वे फिर कहते हैं कि मैं ही सबों की अंतिम गति हूँ, भर्ता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरण हूँ, आधार हूँ और उत्पत्ति एवं नाश का अपरिवर्तनशील कारण हूँ। ये आप्तवचन इस बात को असंदिग्ध रूप से प्रमाणित मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ एक शंका अवश्य उत्पन्न होती है कि केवल आप्त प्रमाण के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व कैसे माना जा सकता है। साधारण मनुष्य जिसे समीक्षा की प्रवृत्ति नहीं रहती है वह भले ही इसे मान सकता है, किंतु दार्शनिक तो कहेगा कि दर्शन में आप्त वचनों का कोई प्रामाण्य नहीं है। दार्शनिक के अनुसार लौकिक या अलौकिक किसी भी प्रकार के विषय की सिद्धि के लिए केवल युक्तियां ही आवश्यक हैं। उसके अनुसार तो जब तक उचित युक्तियां नहीं दी जाएं, तब तक आप्त वचन बिल्कुल बेकार होते हैं। वह ईश्वर सिद्धि के लिए परंपरागत प्रमाणों को बतलाते हुए कह सकता है कि ये ही ईश्वर अस्तित्व के यथार्थ प्रमाण हैं। किंतु जैसा इमैनुअल कांट ने और उनके पश्चात हरमन लॉर्जा ने बतलाया कि ईश्वर सिद्धि के लिए परंपरागत जितनी भी युक्तियां हैं उनमें एक भी ईश्वर को ठीक ठीक प्रमाणित नहीं कर सकती। किसी विषय को सिद्ध करने का अर्थ है कुछ अभ्युपगमों से अर्थात स्वीकृत वाक्यों से अनुमान करके उसका अस्तित्व दिखलाना, किंतु ईश्वर का अनुमान हम ऐसे अभ्युपगमों के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि यथार्थतः ईश्वर ही संसार का आधारभूत सत्ता है और सब प्रमाणों का चरम आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तर्क से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। वस्तुतः तर्क के द्वारा किसी भी बात की सिद्धि नहीं हो सकती है। किसी विषय के अस्तित्व का ज्ञान परोक्ष या अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ही हो सकता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि ठीक है, उसने यदि नारंगी रंग नहीं भी देखा है तो वह केवल लाल और पीले रंग को देखकर उसके बारे में जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति जन्म का अंधा है वह रंग मात्र के बारे में कुछ जान नहीं सकता, चाहे वह लाख तर्क क्यों न करे। यदि किस प्रकार चिकित्सा द्वारा इस अंधे व्यक्ति की दृष्टि ठीक हो जाए तो वह प्रथम बार देखकर ही रंगों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले सकता है। लॉर्जा ने ईश्वर संबंधी हमारे ज्ञान के संबंध में ठीक ही कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए जितनी युक्तियां दी जाती हैं वे तो ईश्वर संबंधी पूर्व से वर्तमान हमारे विश्वास के समर्थन के लिए मिथ्या युक्ति मात्र है। वे युक्तियां केवल यह संकेत करती हैं कि हम किन किन ढंगों से पारमार्थिक सत्ता के संबंध में जान सकते हैं। इन विचारों से यह स्पष्ट है कि ईश्वर का ज्ञान साक्षात अनुभव के द्वारा ही हो सकता है, किसी तार्किक युक्ति के द्वारा नहीं। और यदि साक्षात अनुभव ही वर्तमान रहे तो फिर युक्ति की क्या आवश्यकता है? आप जो अभी इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का अपरोक्ष ज्ञान न रहने पर आप युक्तियों का ढेर लगाकर भी उसके अस्तित्व में विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जिन्हें ईश्वर का अलौकिक सत्ता का साक्षात अनुभव नहीं रहता है, उनको उसका ज्ञान पाने के लिए ऋषियों जैसे शुद्ध चित्त महात्माओं के आप्त वचनों पर निर्भर करना पड़ता है। अतः श्रुति को जो ईश्वरदर्शी महात्माओं के ज्ञानों का संग्रह है, ईश्वर सिद्धि का प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। जिस प्रकार वैदिक नियम की सत्यता के लिए वैज्ञानिक एवं उनके विज्ञान ही प्रमाण है, उसी प्रकार ईश्वर सिद्धि के लिए श्रुति भी प्रमाण है। तीसरा, ईश्वर विचार का तीसरा टॉपिक है ईश्वर विरोधी युक्तियां और उनके उत्तर। यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि तीसरी और चौथी युक्तियां परस्पर विरोधी हैं। तीसरी युक्ति में यह देखा जाता है कि ईश्वर ने ही वेदों को व्यक्त किया है, किंतु चौथी युक्ति में कहा जाता है कि वेद ईश्वर का प्रमाण है। अतः हम देखते हैं कि एक युक्ति में ईश्वर से वेदों के प्रमाण की सिद्धि होती है और दूसरी में वेदों से ईश्वर की सिद्धि की जाती है। लेकिन विचार पूर्वक यदि देखें तो इनमें अनन्याश्रय का यह दोष नहीं पाया जाएगा। किसी विषय का विचार हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से और अस्तित्व की दृष्टि से। अस्तित्व की दृष्टि से वे ईश्वर ही प्रथम हैं, उसने ही वेदों को व्यक्त किया है एवं उन्हें प्रामाणिक रूप दिया गया है, किंतु मनुष्य के ज्ञान की दृष्टि से वेद ही प्रथम है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम ईश्वर पर निर्भर करें, क्योंकि उनका ज्ञान तो किसी योग्य शिक्षक के द्वारा भी हो सकता है। सभी परस्परोपेक्ष विषयों में अनन्याश्रय का दोष नहीं होता, उनमें यह दोष तभी होता है जब वे एक दृष्टि से ही परस्पर निर्भर होते हैं। ऊपर की युक्तियों में वेद के अस्तित्व का लिए ईश्वर पर निर्भर माना है, हमारे ज्ञान के लिए नहीं। उसी प्रकार ईश्वर को ज्ञान के लिए वेद पर निर्भर माना है, अस्तित्व के लिए नहीं। अतः यहाँ अनन्याश्रय दोष नहीं है। न्याय के ईश्वरवाद के विरुद्ध एक दूसरा भी आक्षेप किया जाता है, वह यह है कि यदि ईश्वर इस संसार का कर्ता है तो वह अवश्य शरीरी होगा, क्योंकि बिना शरीर के कोई कर्म नहीं किया जा सकता। न्यायिक कहते हैं कि यह आक्षेप युक्तिहीन है, क्योंकि यदि ईश्वर का अस्तित्व श्रुति के द्वारा सिद्ध हो गया है तब तो उपयुक्त आक्षेप निरर्थक है, क्योंकि जो सिद्ध हो गया है उसके विरुद्ध फिर आक्षेप क्यों? और यदि उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हुआ है तो फिर उसके कर्म के विरुद्ध आक्षेप करना भी तो उसी प्रकार निरर्थक है। सृष्टि के प्रयोजन को लेकर एक तीसरा भी आक्षेप किया जाता है, ईश्वर ने किसी प्रयोजन के लिए ही संसार की सृष्टि की है, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता। प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने किस प्रयोजन के लिए संसार की सृष्टि की? यह तो स्पष्ट है कि ईश्वर का कोई अपना प्रयोजन नहीं हो सकता। क्योंकि वह तो पूर्ण है, उसकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं मानी जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि दूसरों के प्रयोजन के लिए यह सृष्टि हुई है, क्योंकि जो केवल दूसरों के लिए प्रयत्न करता है वह बुद्धिमान नहीं समझा जा सकता। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर ने करुणावश इस संसार की सृष्टि की है। ऐसी बात यदि होती तो वह सभी जीवों को पूर्ण सुखी बना देता और उन्हें दुख से पीड़ित नहीं होने देता, जैसा कि वे होते रहते हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरे के दुख से विमुक्त करने की इच्छा को तो करुणा कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर को हम संसार का कर्ता नहीं मान सकते। न्यायिक इस आक्षेप का उत्तर इस प्रकार देते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ने ठीक ही करुणावश संसार की सृष्टि की है, लेकिन सृष्टि केवल सुखमय हो यह कल्पना बिल्कुल अनुचित एवं निराधार है। सृष्टि तो जीवों के पूर्व संचित कर्मों के अनुसार होती है, अतः इसमें सुख और दुख दोनों का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि चूंकि ईश्वर को सृष्टि के लिए जीवों के कर्मों के अनुसार चलना पड़ता है, इसीलिए वह परतंत्र है। जिस प्रकार किसी का शरीर उसको परतंत्र नहीं बनाता, प्रत्युत कर्म करने के लिए एवं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसका सहायक ही होता है, उसी प्रकार यह संसार ईश्वर को न तो परतंत्र सिद्ध करता है और न उसका बाधक ही बनाता है। वह तो उचित लक्ष्यों की प्राप्ति में और सहायक ही होता है। उपसंहार न्याय दर्शन का पूरा उपसंहार है। न्याय दर्शन अपने प्रमाण विचार के कारण ही इतना उच्च और महान है। प्रमाण विचार पर ही उसका दार्शनिक मत अवलंबित है। भारतीय दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप यह किया जाता है कि यह आप्त वचनों पर अवलंबित है, इसलिए युक्ति प्रधान नहीं है। किंतु न्याय दर्शन से इस आक्षेप का पूरा निराकरण हो जाता है। न्याय का प्रमाण शास्त्र केवल न्याय दर्शन का ही आधार नहीं है। न्याय दर्शन में आत्मा और पारमार्थिक सत्ता संबंधी प्रश्नों का समाधान तर्क युक्ति के द्वारा ही किया गया है। इसी के द्वारा यह यथार्थ ज्ञान पाने का प्रयत्न करता है और इसी के कारण आक्षेपों का खंडन भी करता है। किंतु इसके सत्ता संबंधी जो विचार और मत हैं, वे उतने मान्य नहीं हैं, जितना इसका तर्क शास्त्र है। न्याय के अनुसार इस संसार में परमाणु, मन, आत्मा और ईश्वर नामक अनेक स्वतंत्र सत्ताएं हैं, जो दिक्, काल और आकाश में एक दूसरे से अलग अलग स्थित हैं। न्याय संपूर्ण विश्व के अंतर्गत एक ही परम सत्ता का अस्तित्व नहीं मानता और इस तरह अद्वैतवाद को प्रशय नहीं देता। दार्शनिक दृष्टि से न्याय सांख्य या वेदांत से कुछ हीन समझा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार आत्मा स्वभावतः चेतन नहीं है। आत्मा का जब शरीर के साथ संयोग होता है, तभी वह आकस्मिक रूप से चेतन हो जाता है। किंतु इस मत का खंडन तो हमारी अपनी अनुभूतियों से ही हो सकता है। हमें इस बात का तो साक्षात अनुभव होता है कि चैतन्य आत्मा का स्वभाव ही है, यह उसका कोई आकस्मिक गुण नहीं। न्याय यह भी मानता है कि मुक्त आत्मा चेतनाहीन होती है और इसीलिए जड़ द्रव्यों से इसको पृथक करना कठिन है। न्याय दर्शन में ईश्वर को संसार का कर्ता माना गया है, अर्थात उसे केवल निमित्त कारण माना गया है, उपादान कारण नहीं। इससे यह मालूम पड़ता है कि भगवान की तुलना मनुष्य जैसे कर्ताओं के साथ की गई है। उपादानों से वस्तुओं के निर्माण का कार्य तो मनुष्यों में प्रायः देखा जाता है। यह सही है कि न्याय में कहीं कहीं कहा गया है कि ईश्वर के साथ इस संसार का वही संबंध है जो शरीर का आत्मा के साथ है, किंतु न्याय में इस विचार का विस्तार पूर्णेश्वरवाद के रूप में नहीं हुआ है। फिर भी हमारे जीवन के लिए न्याय का आस्तिकवाद भी कम शिक्षाप्रद और संतोषजनक नहीं है।